एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी कहानी की गहराइयों में जो हाल के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे सनसनीखेज वित्तीय घोटालों में से एक है।
जी हाँ, एक कहानी जिसमें ग्लैमर है, धोखा है, राजनीति है और मतलब अरबों डॉलर का खेल है।
बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं टॉम राइट और ब्रैडली होप की जबरदस्त किताब बिलियन डॉलर वेल की।
हाँ, ये किताब है मलेशिया के एमडीबी फंड, एक सरकारी निवेश फंड से हुई अरबों डॉलर की अविश्वसनीय लूट की कहानी।
और इस कहानी का सेंटर पॉइंट है जोलो, एक ऐसा नाम, एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों, बैंकों, यहां तक कि सरकारों को भी सालों तक अपनी उंगलियों पर नचाया।
सोचिए जरा, करीब करीब 4.5 से 5 अरब डॉलर जनता का पैसा, और वो कैसे हवा हो गया।
सही बात है, और ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा।
बिल्कुल, ये दिखाती है कि आज की ये जो कनेक्टेड दुनिया है, इसमें कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के पेचीदगियों का, राजनीतिक भ्रष्टाचार का, और हाँ, सेलिब्रिटी कल्चर का इस्तेमाल करके, हाँ, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, ये वो फंड होते हैं जो देश अपनी कमाई से, जैसे तेल बेचकर या दूसरी बचत से, बनाते हैं भविष्य के लिए निवेश करने को।
कहने को तो भलाई के लिए।
बिल्कुल, ये कहने को यहाँ बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर खेल हुआ।
अच्छा, और इन दोनों लेखकों की जोड़ी की सबसे खास बात?
देखिए, खास बात यह है कि इन्होंने सिर्फ कहानी लिखी नहीं, इन्होंने इस कहानी को ब्रेक किया, मतलब दुनिया के सामने लाए।
हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल में 2015 से इनकी जो रिपोर्ट्स की सीरीज छपी, उसी ने तो दुनिया का ध्यान इस 1MDB घोटाले की तरफ खींचा था।
सही कहा, ये सिर्फ घटना के बाद लिखने वाले नहीं, ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने असल में पहेली के टुकड़े जोड़े।
उनके पास लीक हुए दस्तावेज थे, अंदरूनी सूत्र थे, तभी तो ये किताब इतने विस्तार से, इतने भरोसे के साथ बताती है कि आखिर हुआ क्या था।
हाँ, वो पैसे के निशान का पीछा करना जानते थे, चाहे वो पैसा कितनी ही शेल कंपनियों से क्यों ना गुजरा हो।
तो ये किताब बिलियन डॉलर वेल है क्या आखिर? किस बारे में है ये?
ये कहानी है झोलो की, एक मलेशियाई फाइनेंसर जिसकी शुरुआत तो मतलब एक सामान्य बैकग्राउंड से हुई,
लेकिन वो बन गया दुनिया के सबसे शातिर, सबसे बड़े वित्तीय धोखेबाजों में से एक।
किताब परत दर परत खोलती है कि कैसे लो ने शेल कंपनियों का एक पूरा जाल बुना।
शेल कंपनी यानी वो कंपनी जो असल में कोई काम नहीं करती, बस कागजों पर होती है पैसा घुमाने के लिए।
हाँ बिल्कुल, पैसा छिपाने के लिए, इधर उधर करने के लिए। उसने फर्जी निवेश योजनाएं बनाई, झूठे सौदे दिखाए, और इस तरह मलेशिया के 1MDB फंड से अरबों डॉलर निकाल लिए।
और ये 1MDB फंड तो मलेशिया के लोगों के लिए था, उनके विकास के लिए।
हाँ बिल्कुल, लेकिन पैसा गया कहाँ? दुनिया भर में आलीशान घर खरीदने में, सुपर यार्ड खरीदने में, मतलब एक तैरता हुआ महल समझ लीजिए, प्राइवेट जेट।
और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में फाइनेंस करने में।
विडंबना देखिए, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसी फिल्म जो खुद फाइनेंशियल फ्रॉड पर बनी है, वो भी इसी चोरी के पैसे से बने।
सच में यकीन करना मुश्किल है। और सबसे खतरनाक बात,
ये कि इस पैसे का इस्तेमाल हुआ मलेशिया के उस वक्त के प्रधानमंत्री नजीब रजाक समेत कई देशों के नेताओं को प्रभावित करने में,
और दुनिया भर की मशहूर हस्तियों के बीच अपनी पहचान, अपनी पैठ बनाने में।
हाँ, ये किताब ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम की खामियों को भी सामने लाती है, कैसे लो ने अलग अलग देशों के कानूनों, रेगुलेशंस के बीच जो गैप थे, उनका फायदा उठाया।
एक सॉवरेन वेल्थ फंड का नाम इस्तेमाल करके वो कैसे सामान्य जांच से बचता रहा,
और कैसे उसने पर्सनल कनेक्शन, मतलब निजी रिश्तों का इस्तेमाल करके सत्ता के ऊंचे ऊंचे गलियारों तक पहुंच बना ली। ये सिर्फ लो की नहीं, उस पूरे सिस्टम की कहानी है जिसने उसे ये सब करने दिया।
चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं किताब के सफर पर। कहानी शुरू होती है लो के शुरुआती दिनों से।
हाँ, मलेशिया का एक ठीक ठाक परिवार, लेकिन लो के सपने बहुत बड़े थे। उसने ब्रिटेन के हैरो, अमेरिका के वॉर्टन जैसे बड़े नामी संस्थानों में पढ़ाई की,
लेकिन किताब कहती है कि उसकी असली काबिलियत पढ़ाई में उतनी नहीं थी जितनी अमीर और असरदार लोगों से दोस्ती करने में थी।
बिल्कुल, उसने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि दुनिया में असलियत से ज्यादा दिखावे की कीमत है।
उसने महंगी कारें किराए पे लीं, शानदार अपार्टमेंट दिखाए, अपनी संपत्ति के बारे में खूब बड़ा चढ़ाकर बातें की।
हाँ, छोटी मोटी डील्स को ऐसे पेश करता था जैसे वो अरबों का सौदा हो, और इसी दिखावे के दम पर उसने मलेशिया के बिजनेस सर्कल्स में अपनी जगह बना ली।
और यही उसकी मुलाकात हुई मलेशिया के तब के उप प्रधानमंत्री और जो बाद में प्रधानमंत्री बने नजीब रजाक के सौतेले बेटे रिजा अजीज से।
वॉटन में बनी ये दोस्ती ये झोलो के लिए सत्ता के दरवाजे खोलने वाली चाबी बन गई।
और जैसे ही नजीब रजाक प्रधानमंत्री बने खेल बड़ा हो गया।
हाँ बिल्कुल, 2009 में नजीब रजाक प्रधानमंत्री बने और झोलो ने उन्हें 1MDB फंड बनाने का आइडिया दिया, वन मलेशिया डेवलपमेंट बढ़ाद।
कागजों पर तो मकसद बड़ा नेक था, मलेशिया का आर्थिक विकास, स्ट्रेटेजिक निवेश।
लेकिन किताब के मुताबिक पर्दे के पीछे का मकसद कुछ और था। ये नजीब रजाक के लिए एक तरह का सीक्रेट पॉलिटिकल फंड बनने वाला था और झोलो के लिए एक पर्सनल ATM मशीन।
और यहीं से शुरू हुआ लूट का सिलसिला।
हाँ, पहली बड़ी चोरी हुई पेट्रो सऊदी नाम की एक छोटी सी सऊदी तेल कंपनी के साथ, एक जॉइंट वेंचर के नाम पर।
1MDB ने इसमें $1 बिलियन का निवेश किया।
लेकिन किताब खुलासा करती है कि ये जॉइंट वेंचर काफी हद तक फर्जी था और उस $1 बिलियन में से $700 मिलियन
वो कहां गए?
वो तुरंत एक स्विस बैंक खाते में भेज दिए गए। और खाता किसका था? झोलो के कंट्रोल वाली एक शेल कंपनी का।
ये तो बस शुरुआत थी।
हाँ, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी।
और फिर इस कहानी में एंट्री होती है एक बहुत बड़े नाम की, गोल्डमैन सैक्स।
हाँ, दुनिया का जाना माना इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्होंने 1MDB के लिए $6.5 बिलियन के 3 बड़े बॉन्ड इशू मैनेज किए।
$6.5 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है।
बिल्कुल, और इसके लिए गोल्डमैन सैक्स ने फीस कितनी ली अंदाजा लगाइए, करीब $600 मिलियन।
$600 मिलियन फीस, क्या ये नॉर्मल है?
बिल्कुल नहीं, ये उस तरह के सौदों के लिए सामान्य फीस से कई गुना ज्यादा थी। सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों?
यही तो पेच है। किताब बताती है कि गोल्डमैन सैक्स के अंदर लोग, खासकर उनके साउथ ईस्ट एशिया के स्टार बैंकर थे टिम लेसना, उन्हें कई रेड फ्लैग्स दिख रहे थे।
उन्हें पता था कि झोलो की भूमिका संदिग्ध है, पैसे का इस्तेमाल शायद सही जगह नहीं हो रहा।
लेकिन फिर भी,
लेकिन वो भारी भरकम फीस का लालच शायद उसने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। किताब इशारा करती है कि बैंक ने जानबूझकर इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया
और इन बॉन्ड्स से जो अरबों डॉलर आए वो भी विकास में नहीं लगे।
नहीं, वो एक बार फिर शेल कंपनियों के एक जटिल जाल के जरिए गायब हो गए, सिस्टमैटिक तरीके से लूटे गए।
अब जब अरबों डॉलर हाथ में आ गए तो झोलो ने क्या किया? सिर्फ छिपाए रखा या?
अरे नहीं, उसने दुनिया को दिखाया, उसने खुद को एक ग्लोबल प्लेबॉय, एक पावर ब्रोकर के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। लास वेगस, सेंट ट्रोपेज, न्यूयॉर्क, दुनिया भर में शानदार पार्टियां होने लगी।
और इन पार्टियों में कौन आता था,
कौन नहीं आता था? पेरिस हिल्टन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, मिरांडा केर, जेमी फॉक्स, हॉलीवुड के बड़े बड़े नाम। और लो, इन पर बेतहाशा पैसा लुटा रहा था।
शैंपेन की नदियां बह रही थी, एक एक पार्टी पर लाखों करोड़ों डॉलर खर्च।
उसने इन सेलिब्रिटीज को महंगे तोहफे दिए, डिकैप्रियो को मार्लन ब्रांडो का ऑस्कर अवार्ड तक गिफ्ट कर दिया, पिकासो की पेंटिंग, बास्किया की पेंटिंग, करोड़ों की।
सुपर मॉडल मिरांडा केर को हीरे के गहने और एक पारदर्शी क्रिस्टल पियानो।
अविश्वसनीय। लेकिन ये सिर्फ अय्याशी नहीं थी,
ये एक स्ट्रैटेजी थी।
हाँ, ये एक सोची समझी रणनीति थी। इन सेलिब्रिटीज के साथ उठने बैठने से लो को एक तरह की सोशल वैलिडेशन मिल रही थी।
लोग सोचने लगे कि जिसके साथ इतने बड़े सितारे हैं वो कोई ऐरा गैरा तो नहीं हो सकता।
बिल्कुल, इससे उसके पैसे के असली स्रोत पर सवाल उठाने की हिम्मत कम हो जाती थी।
और हॉलीवुड कनेक्शन तो और भी गहरा था, उसने अपने दोस्त रिजा अजीज की प्रोडक्शन कंपनी रेड ग्रैनिट पिक्चर्स में पैसा लगाया,
चोरी का पैसा, और इसी पैसे से बनी फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट।
मतलब जनता से चुराए पैसे से एक ऐसी फिल्म बनाना जो खुद एक बड़े फाइनेंशियल धोखेबाज की कहानी हो। लो खुद फिल्म के प्रीमियर पर रेड कार्पेट पर चल रहा था।
हाँ, उसने $250 मिलियन में एक सुपर याट एक्वानिमिटी खरीदी जिसमें हेलीपैड से लेकर मूवी थिएटर तक सब था।
ये सब सिर्फ दिखावा नहीं था, ये दुनिया को यकीन दिलाने का तरीका था कि वो सच में $1 बिलियन वेल है।
लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते। धीरे धीरे इस चमक दमक के पीछे की सच्चाई सामने आने लगी।
और इसमें इन किताब के लेखकों टॉम राइट और ब्रैडली होप की पत्रकारिता का बहुत बड़ा रोल था।
हाँ, उन्हें पेट्रो सऊदी कंपनी के एक पुराने कर्मचारी जेवियर जस्ट्रो से हजारों लीक ईमेल्स और दस्तावेज मिले, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था।
इन दस्तावेजों से घोटाले के तार जुड़ने लगे।
राइट, और होप ने महीनों लगाकर पैसे के फ्लो को ट्रैक किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे 1MDB का पैसा लो की शेल कंपनियों में गया।
कैसे नजीब रजाक के पर्सनल बैंक खाते में करीब 700 मिलियन डॉलर पहुंचे
और कैसे वही पैसा उन आलीशान पार्टियों, महंगे तोहफों और हॉलीवुड फिल्मों पर खर्च हो रहा था।
जब उनकी रिपोर्ट्स वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी तो क्या हुआ?
दुनिया भर में हड़कंप मच गया। मलेशिया में तो जैसे राजनीतिक भूचाल आ गया। कई देशों की जांच एजेंसियां हरकत में आईं, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर
और अमेरिका।
हाँ, सबसे बढ़कर अमेरिका का न्याय विभाग डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उन्होंने जांच शुरू की।
डीओजे ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा संपत्ति जब्ती का केस फाइल किया, क्लेप्टोक्रेसी एसेट रिकवरी इनिशिएटिव के तहत।
उनका मकसद था 1MDB से चुराए गए पैसे से खरीदी गई संपत्तियों को जब्त करना, वो सुपर यार्ट, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के पेंट हाउस, पेंटिंग्स
और द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट फिल्म के अधिकार भी,
वो सब।
और फिर आया अंत। इस घोटाले का नतीजा क्या निकला?
मलेशिया में 2018 में आम चुनाव हुए, 1MDB घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और नतीजा 60 साल से सत्ता पर काबिज नजीब रजा की पार्टी हार गई।
ये तो ऐतिहासिक था मलेशिया के लिए।
बिल्कुल, नई सरकार ने आते ही 1MDB घोटाले की जांच तेज कर दी। नजीब रजाक और उनकी पत्नी रोसमा मंसूर, जो अपने महंगे शौकों के लिए कुख्यात थीं, गिरफ्तार हुए।
उन पर मुकदमे चले, सजा भी हुई।
गोल्डमैन सैक्स को भी भारी जुर्माना भरना पड़ा, मलेशिया से माफी मांगनी पड़ी। उनके बैंकर टिम लाइसनर ने अमेरिका में अपना गुनाह कबूल कर लिया। कई और लोग भी पकड़े गए।
लेकिन कहानी का मुख्य किरदार जो लो, वो कहाँ है?
वो फरार हो गया। आज भी वो एक इंटरनेशनल भगोड़ा है।
कहाँ है, कुछ पता है?
माना जाता है कि वो चीन में कहीं छिपा है या शायद किसी और जगह, और अरबों डॉलर अभी भी गायब हैं। कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस पूरी दास्तान से कई बड़े सबक और संदेश निकलते हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।
पहला तो शायद यही कि भ्रष्टाचार अब लोकल नहीं रहा, ग्लोबल हो गया है।
बिल्कुल, भ्रष्टाचार का वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ऑफ करप्शन, ये सिर्फ मलेशिया का मामला नहीं था। लो ने स्विस बैंकों की सीक्रेसी, अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी, अलग अलग देशों के लचर कानूनों का फायदा उठाया।
पैसा सीमाओं को नहीं पहचानता, खासकर जब वो गलत तरीके से कमाया गया हो।
दूसरा सबक है धारणा और सामाजिक इंजीनियरिंग की शक्ति,
मतलब दिखावे की ताकत।
हाँ, जोलो की असली कलाकारी शायद फाइनेंस में उतनी नहीं थी जितनी लोगों को भरमाने में थी। उसने अमीरी और पहुंच का ऐसा जबरदस्त मुखौटा पहना कि बड़े बड़े दिग्गज भी धोखा खा गए।
ये हमें सिखाता है कि सिर्फ बाहरी चमक दमक देखकर किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। अपने आप ही कितने ऐसे मामले सामने आते हैं ना।
सही बात है। तीसरा है जानबूझकर अनदेखी और प्रणालीगत मिलीभगत, विलफुल ब्लाइंडनेस एंड सिस्टमिक कॉम्प्लिसिटी।
ये शायद सबसे चिंताजनक बात है।
मतलब जिन लोगों को सिस्टम का पहरेदार होना चाहिए था, उन्होंने ही आंखें मूंद ली।
हाँ,
बड़े बड़े बैंक, लॉ फर्म, ऑडिटर, उन्होंने या तो अनदेखी की या फिर लालच में साथ दिया। गोल्डमैन सैक्स का उदाहरण साफ है। ये सवाल उठता है कि क्या हमारा सिस्टम ऐसा है कि उसमें ऐसी मिलीभगत की गुंजाइश है?
चौथा, सेलिब्रिटी और ग्लैमर का आकर्षण,
सिडक्टिव अल्योर ऑफ सेलिब्रिटी।
लो ने बड़ी चालाकी से हॉलीवुड और मशहूर हस्तियों का इस्तेमाल किया अपनी इमेज बनाने के लिए।
सितारों के साथ उसकी तस्वीरों ने उसे एक कूल और पावरफुल शख्स दिखाया, जिससे सवाल पूछने वाले हिचकने लगे।
आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये और भी ज्यादा सच है, इमेज ही सब कुछ है। पांचवां, खोजी पत्रकारिता की भूमिका, इंडिस्पेंसिबल रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। ये किताब खुद इसका सबूत है।
हाँ, अगर टॉम राइट और ब्रैडली होप जैसे पत्रकार न होते तो शायद ये घोटाला कभी इतने बड़े पैमाने पर सामने ही नहीं आता। जब सत्ता और पैसे का गठजोड़ सच को दबाने की कोशिश करता है, तब स्वतंत्र पत्रकारिता ही उम्मीद बनती है।
और छठा, अहंकार और उसका पतन।
जो लो इतना बेखौफ हो गया था, उसे लगने लगा था कि वो कानून से ऊपर है, उसे कोई छू नहीं सकता,
और यही घमंड उसे ले डूबा।
हाँ, उसका यही अहंकार, यही बेहिसाब दिखावा आखिर में उसके पतन का कारण बना।
किताब में कुछ ऐसी लाइनें हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे पूरी कहानी का निचोड़ हो।
हाँ बिल्कुल, जैसे ये विचार, लो की प्रतिभा वित्त में नहीं बल्कि ये समझने में थी कि अगर आप अकल्पनीय धन का भ्रम पैदा करते हैं तो लोग उस पर विश्वास करेंगे और आपको वास्तविक धन तक पहुंच देंगे।
ये दिखाता है कि उसने कैसे सिर्फ हवा बेचकर असली खजाना पा लिया, दिखावे का खेल।
और सिस्टम पर ये तीखी टिप्पणी, पूरी वैश्विक वित्तीय प्रणाली, बैंक, कानून फर्म, नियामक, ये पूछने के लिए बनी थी कि हम ये सौदा कैसे कर सकते हैं, न कि क्या हमें यह सौदा करना चाहिए।
ये सीधा गोल्डमैन सैक्स जैसी संस्थाओं पर निशाना है। उनका फोकस सिर्फ डील करने और पैसा बनाने पर था, सही गलत पर नहीं।
और ये विडंबना, जनता से चुराए गए अरबों डॉलर का इस्तेमाल एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म को फाइनेंस करने के लिए करना जो एक ऐसे वित्तीय धोखेबाज के बारे में है जिसने जनता को लूटा था, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के बारे में,
ये तो कमाल का दुस्साहस है, जैसे जनता का मजाक उड़ाना।
और आखिरी में ये विचार जो थोड़ा परेशान करता है, 1MDB घोटाला एक ऐसी प्रणाली का मामला नहीं था जो टूट गई, ये एक ऐसी प्रणाली का मामला था जिसने ठीक वैसे ही काम किया जैसा इसे उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था जो इसका फायदा उठाना जानते थे।
मतलब दिक्कत सिर्फ कुछ लोगों में नहीं, शायद सिस्टम में ही है, उसमें ऐसी कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है।
हाँ, ये सवाल सोचने वाला है।
तो इस पूरी कहानी से हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या सीख ले सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल बातें?
देखिए, सबसे पहली बात तो ड्यू डिलिजेंस यानी पूरी जांच पड़ताल का महत्व।
मतलब
किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा ना करें।
हाँ,
चाहे कोई छोटा सा निवेश हो, कोई प्रॉपर्टी डील हो या कोई नई स्कीम, जरा रुक कर सोचना, जांचना जरूरी है। क्या ये उतना ही अच्छा है जितना दिख रहा है? कहीं कोई झोल तो नहीं?
खासकर आजकल ऑनलाइन इतने सारे ऑफर्स आते रहते हैं लुभावने।
बिल्कुल। और जो लोग फाइनेंस, लॉ या अकाउंटिंग जैसे प्रोफेशन में हैं, उनके लिए ये एक नैतिक चेतावनी है। शॉर्टकट या थोड़े ज्यादा कमीशन के लालच में गलत काम में फंसने का अंजाम बुरा हो सकता है। टिम लिस्नर का उदाहरण सामने है।
हाँ, साख बनाने में सालों लगते हैं, गंवाने में एक पल।
ये कहानी हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स और क्लिप्टोक्रेसी यानी चोर तंत्र को भी समझने में मदद करती है। कैसे कुछ देशों में नेता और उनके साथी अपने ही देश को लूटते हैं और वो पैसा कहीं और, विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में लग जाता है। यह हमें सिखाता है कि ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही की मांग करना कितना जरूरी है,
अपने देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी।
साथ ही क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। मीडिया में जो दिख रहा है, सोशल मीडिया पर जो चमक रहा है, उसे जस का तस ना मान ले।
खासकर जब कोई अपनी अमीरी और पहुंच का बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा हो, सवाल पूछना बनता है कि भाई ये पैसा आ कहां से रहा है, ग्लैमर के पीछे की कहानी क्या है।
अंत में ये कहानी हमें जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है। हमें उन वित्तीय सुधारों की मांग करनी चाहिए जो ऐसी लूट को मुश्किल बना दें,
जैसे शेल कंपनियों पर लगाम लगाना, कंपनियों के असली मालिकों की जानकारी पब्लिक करना,
और देशों के बीच सहयोग बढ़ाना ताकि अपराधी एक देश से भागकर दूसरे में न छिप सकें।
मेरे लिए तो इस पूरी कहानी में सबसे हैरत अंगेज बात यही थी कि कैसे एक अकेला आदमी झोलो पूरी दुनिया को, इतने सारे संस्थानों को इतने लंबे समय तक धोखा देता रहा।
हाँ, ये लगभग अविश्वसनीय लगता है।
इतने सारे चेक एंड बैलेंस हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, और फिर भी वो कामयाब रहा, ये सोचने पे मजबूर करता है कि सिस्टम में कितनी बड़ी कमियां हो सकती हैं। और हाँ, वो हॉलीवुड वाला एंगल, वो तो बिल्कुल फिल्मी लगता है।
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये लालच की, मिलीभगत की और सिस्टम की विफलता की कहानी है।
ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया कितनी जटिल और कह सकते हैं अपारदर्शी हो सकती है, और कैसे इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है।
और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में रह जाता है, क्या आज हम ऐसे घोटालों को रोकने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं? क्या वाकई जरूरी सबक सीखे गए हैं, बदलाव हुए हैं?
या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा किसी नए बिलियन डॉलर व्हेल के साथ?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य ही देगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।